हाँ जी, आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टर की नेक्स्ट क्लास की रिवीजन, जो कि आज हमने शुरू किया सेक्शन 185 से, इस पोर्शन से कि सेक्शन 185 कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि कल एग्जम्पशन तक हम लोग कर चुके थे। चलिए, अब हमने कहा सेक्शन 185 कुछ केसेस में अप्लाई नहीं होता। वो कौन कौन से केसेस हैं, जिसमें हमने पहला कहा कि जब भी लोन दिया जाता है किसी MD या WTD को, और अगर ये लोन दिया गया है एज पर द पॉलिसी ऑफ ऑल एम्प्लॉय, मगर मतलब अगर कंपनी की पॉलिसी है सारे के सारे एम्प्लॉयज के लिए कि होम लोन दिया जा रहा है, और वही होम लोन अगर किसी डायरेक्टर को दिया जा रहा है तो 185 नहीं लगेगा, क्योंकि एज पर द पॉलिसी है। बट सेकेंड पॉइंट किया जा रहा है, कह रहा है कि अगर MD और WTD को लोन देते हो और अगर पॉलिसी नहीं है तो भी अलाउ है, अगर अप्रूव्ड कर दिया गया है लोन स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा तो भी अलाउ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड कहता है अगर कंपनी का काम ही लोन गारंटी या सिक्योरिटी देना है, बैंकिंग कंपनी, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 185 तब भी नहीं लगेगा। ये था सेक्शन 185। बट उसके बाद वो कहता है कि सेक्शन 185 अमेंडमेंट कहती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नहीं लगेगा इफ, पहला, अगर उस प्राइवेट लिमिटेड में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद रखे किसी और बॉडी कॉरपोरेट ने, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने किसी और कंपनी या फिर बॉडी कॉरपोरेट को अपने शेयर नहीं दिए हुए प्राइवेट प्लेसमेंट वगैरह के थ्रू। सेकेंड, अगर प्राइवेट कंपनी की जो बोरोइंग है वो कितनी है, टोटल बोरोइंग जो है वो लेस देन है किससे, 2 टाइम्स ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल और ₹50 करोड़, दोनों में से जो भी लोअर हो उससे नीचे नीचे ही है बोरोइंग, क्यों, पर्पस क्या है। अरे भैया, तुम्हारी इतनी खुद की बोरोइंग है और तुम औरों को लोन देने जा रहे हो, ये गलत है। तो इसलिए बोरोइंग पे लिमिट लगा दी गई है कि अगर बोरोइंग 2 टाइम्स ऑफ द पेड अप कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर से ज्यादा हो जाती है तो फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे ये सेक्शन लगना शुरू हो जाएगा, मगर अगर बोरोइंग कम है तो ये सेक्शन नहीं लगेगा। थर्ड, कोई भी डिफॉल्ट सबसिस्टेंस में नहीं है, किससे रिलेटेड डिफॉल्ट, किसी लोन वगैरह के रीपेमेंट से रिलेटेड, ये तीनों अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं, यानी कि पहली कंडीशन कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी किसी और कंपनी ने इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बोरोइंग कम है एंड कोई डिफॉल्ट नहीं है, तब ये सेक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे लगता है, पे नहीं लगता, और अगर इन तीनों में से कोई भी कंप्लाई नहीं हुआ तो फिर पूरा सेक्शन लगना शुरू हो जाता है। चलिए, सेक्शन 185 नॉट एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट, अगर आपने अप्रूवल प्रदान कर ली है किससे, प्रेसिडेंट और द कंसर्न डिपार्टमेंट, सिंपल सी बात है, ये पावर किसको दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को दी गई है। चलिए, फिर इसके बाद आज हमने किया सेक्शन 180। सेक्शन 180 बात करता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ द पावर ऑफ बोर्ड, जो कहता है कि कुछ काम ऐसे हैं जो बोर्ड तभी कर सकता है जब उसको पीछे से SR पास हुआ होगा, यानी कि SR कब कब पास हुआ होगा और कौन कौन से काम कर सकता है। पहला कहता है सेल, लीज, डिस्पोज ऑफ, किसको, द होल और सब्सटेंशली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग। ये बात कर रहा है इस सिनेरियो की जब कंपनी की एक ही अंडरटेकिंग हो, इफ मोर देन वन अंडरटेकिंग द होल और सब्सटेंशली द होल ऑफ सच अंडरटेकिंग, ये तब की बात कर रहा है जब मोर देन वन अंडरटेकिंग हो। अगर वन अंडरटेकिंग हो तो आप या तो पूरा का पूरा उसे बेच रहे हो और या फिर 20% या उससे ज्यादा बेच रहे हो तो फिर आप इस सेक्शन में कवर हो जाते हो। अगर एक से ज्यादा अंडरटेकिंग हो तो फिर या तो आप सभी अंडरटेकिंग को बेच रहे हो या फिर 20% हो या उससे ज्यादा की अंडरटेकिंग को बेच रहे हो तो भी आप इस ट्रांजेक्शन में कवर हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात, और आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्ट एक्सेप्ट इन द ट्रस्ट सिक्योरिटी, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ट्रस्ट सिक्योरिटी को छोड़कर कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, कंपनसेशन जो आपको मिली है आउट ऑफ द मर्जर और अमलगमेशन, मतलब आपकी कंपनी का मर्जर, आपने किसी के शेयर खरीदे हुए थे किसी कंपनी के, उस कंपनी का मर्जर अमलगमेशन हुआ, आपको कंपनसेशन मिली और आपने वो ट्रस्ट सिक्योरिटी में लगा दी, कोई दिक्कत नहीं, ट्रस्ट के अलावा कहीं भी लगाई पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी आपको 180 के अंदर। थर्ड, बोरोइंग, अगर आपकी बोरोइंग एक्सीड कर रही है इंक्लूडिंग एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग को मिलाकर पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से ज्यादा, बट इसमें जब हम बोरोइंग देखेंगे तो एक्सक्लूड कर देंगे टेम्परेरी, टेम्परेरी लोन्स को एक्सक्लूड कर देंगे। टेम्परेरी लोन्स में क्या क्या आता है, इसमें आते हैं आपका कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट या फिर डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, डिमांड लोन वगैरह, ये सब आते हैं, इनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। क्लॉज डी कहता है रेमिट और गिव टाइम देते हो फॉर द डेट ड्यू फ्रॉम द डायरेक्टर। मान लीजिए आपने डायरेक्टर को कोई लोन दिया, अब डायरेक्टर को जो लोन दिया उसमें आप उसे और टाइम दे रहे हैं, एक्सटेंशन ऑफ टाइम दे रहे हैं या लोन वेव कर रहे हैं। अच्छा, डायरेक्टर को लोन कैसे दिया जा सकता है, मैंने कहा सेक्शन 185 भी तो अलाउ ही करता है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा तो है, अभी आज की क्लास में हमने पढ़ा कि अगर आप MD को लोन देते हो एज पर द स्कीम या फिर MD वगैरह को लोन देते हो एज पर द पॉलिसी, या फिर एसआर, तो अलाउ तो है, और अगर आपने जो अलाउ जो आपने लोन दिया आप उसे रेमिट कर रहे हो या फिर टाइम दे रहे हो एक्सटेंशन का, तो यहाँ पर आपको पहले अप्रूवल चाहिए। फिर सेक्शन 180 सबसेक्शन 2 कहता है कि एसआर जब पास होगा अंडर सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में, तो वह एग्जैक्ट अमाउंट जरूर प्रिस्क्राइब करेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहाँ तक बोरो कर सकते हैं। उसके बाद सबसेक्शन 3 कहता है कि सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में अगर कोई ट्रांजेक्शन होती है तो वो किसी भी तरीके से राइट अफेक्ट नहीं करेगी, किसका, सामने वाली पार्टी आउटसाइडर जिससे ट्रांजेक्शन हुई है अगर वो गुड फेथ में है तो। दूसरा, सेल और लीज where it is an ordinary course of the business, section 180 subsection 1 clause A नहीं लगेगा अगर कंपनी का बिजनेस ही प्रॉपर्टियां बेचना या फिर लीजिंग करना है। सेक्शन 180 नॉट एप्लीकेबल टू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। फिर आज हमने शुरुआत कर दी हैवी वेट की सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की, बट मैंने कहा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कराने से पहले आपको दो डेफिनेशन याद होना चाहिए। पहली डेफिनेशन थी रिलेटिव की और दूसरा डेफिनेशन था रिलेटेड पार्टी की। रिलेटिव के डेफिनेशन में कौन आता है, स्पाउस, मेंबर्स ऑफ HUF, और तीसरा अदर्स आते हैं। बट अदर्स को लाने का पर्पस क्या है, प्रिंसिपल क्या है, दो प्रिंसिपल लिखे गए, दो प्रिंसिपल, ये लिखा है पीडी ऊपर नीचे, याद करो एक पीडी ऊपर एक पीडी नीचे, कुछ याद आया। दूसरा प्रिंसिपल, सबका विवाह होना जरूरी है, तब मैंने अदर रिलेटिव आपकी कॉपीज में बनवाए थे, कुछ याद आया। आगे बढ़ते हैं, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 76 में लिखी गई है, वो क्या कहता है। रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन कहती है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल कैटेगरी को कवर किया है पहले, फिर उसने फॉर्म को कवर किया, फिर प्राइवेट लिमिटेड को, फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी को कवर किया है, ठीक है। तो देखते हैं पहले इंडिविजुअल कैटेगरी से देखते हैं, आप रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे अगर आप डायरेक्टर या रिलेटिव ऑफ कंपनी, आप कंपनी के डायरेक्टर हो या उसके आप रिलेटिव हो डायरेक्टर के, तो आप रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। दूसरा, अगर आप KMP हैं या KMP के रिलेटिव हैं तो भी आप कंपनी के रिलेटिव माने जाएंगे। थर्ड, अगर डायरेक्टर मैनेजर रिलेटिव पार्टनर है, फॉर्म से डीलिंग हो रही है, मतलब कंपनी डीलिंग कर रही है फॉर्म से जहां पर कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर या उनका रिलेटिव पार्टनर है, तो कंपनी और फॉर्म दोनों में रिलेटेड, दोनों रिलेटेड पार्टी मानी जाएंगी। अगर कंपनी डीलिंग कर रही है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जिसमें हमारी कंपनी का डायरेक्टर मैनेजर रिलेटिव या तो मेंबर है या डायरेक्टर है, तो भी ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। अगर कंपनी डीलिंग कर रही है पब्लिक लिमिटेड कंपनी से जिसमें कंपनी का डायरेक्टर मैनेजर या तो डायरेक्टर है प्लस प्लस 2% से ज्यादा की होल्ड भी करता है उस कंपनी की कैपिटल। सिक्स पॉइंट, अगर डीलिंग हो रही है बॉडी कॉर्पोरेट से जिसका बोर्ड, MD और मैनेजर एक्ट करता है एज पर द एडवाइस ऑफ डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ आर कंपनी, हमारी कंपनी के डायरेक्शन को फॉलो करता है। अगर डीलिंग हो रही है किसी ऐसे पर्सन से जिसकी एडवाइस पर मेरी कंपनी का मैनेजर और डायरेक्टर काम करते हैं, एग्जांपल सहारा रियल एस्टेट का मैंने लिखा था। नेक्स्ट, अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं किसी और कंपनी से जो कि सब्सिडरी है ऑफ इट्स होल्डिंग, मतलब भाइयों का संबंध है, आपस में भाइयों का संबंध है, तो भी कवर है। दूसरी बात, यहां पर कह रही है दोनों अलग अलग ट्रांजेक्शन है, अगर आप डीलिंग कर रहे हैं ऐश से, ऐश का मतलब अपनी एसोसिएट से, सब्सिडरी से या होल्डिंग से, तो भी रिलेटेड पार्टी है। और अगर डीलिंग कर रहे हैं किसी ऐसी कंपनी से जो कि सब्सिडरी आपकी होल्डिंग की, तो भी रिलेटेड पार्टी है। ये दोनों अलग अलग ट्रांजेक्शन है, ये ए में कवर हो रहा है, ये बी में कवर हो रहा है, दोनों में रिलेटेड पार्टी है। नेक्स्ट, अगर आप डीलिंग कर रहे हैं डायरेक्टर से, KMP से, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हटा देना, और या उनके रिलेटिव से, किसके, ऑफ होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर या KMP से या फिर उनके रिलेटिव से, तो भी ये रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। अभी आज की क्लास तक मैंने आपको केवल ये बताया कि रिलेटेड पार्टी क्या होती है, अगली क्लास से मैं शुरू करूंगा कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन क्या होती है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ध्यान रख लेना, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां आ सकता है कि सेक्शन 185 और ये दोनों सेम है क्या, द आंसर इज नो। ध्यान रखना दोनों में फर्क आ रहा है, दोनों में फर्क आ रहा है, ये फर्क को ही आपको अंडरस्टैंड करना है। यहां पर देखिए कैटेगरी, पहला डायरेक्टर और रिलेटिव के साथ डीलिंग की, या वहां पर आता था डायरेक्टर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी, फिर जगह जगह सच डायरेक्टर वर्ड यूज किया गया था, यहां ऐसा नहीं है, तो दोनों में फर्क है। दूसरे में वो कहता है KMP और उसके रिलेटिव से डीलिंग की, सेक्शन 185 में इनका कोई मेंशन नहीं था। तीसरा, फॉर्म जिसमें डायरेक्टर मैनेजर या उनके रिलेटिव पार्टनर है मैनेजर, वहां ऐसा कोई मेंशन नहीं था। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से डील कर रहे हो जिसमें आपका डायरेक्टर या मैनेजर, वहां ऐसा मेंशन नहीं था, मैनेजर वर्ड मेंशन नहीं था, ठीक है। थोड़ा बहुत सेम चल रहा है मगर अलग अलग है, आपको दोनों को अलग अलग रिकॉल करना ही पड़ेगा, इसके लिए ये समरी आपके पास है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।